श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्ण। तो 2016 इस साल के बरसाना कैंप की यात्रा में आप सबका स्वागत है। हरि बोल। बरसाना धाम की तो यात्रा के कुछ नियम हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। यात्रा में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, नहीं तो यात्रा का भाव पूर्ण नष्ट हो जाएगा। अगर आप सडनली असुरक्षित हो जाएंगे तो आपका यात्रा का भाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यात्रा कभी भी हम जब करते हैं, यात्रियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तो कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा सुरक्षा और आपका हित देखते हुए हम आगे का निर्णय लेंगे क्या करेंगे। जिनके साथ में बच्चे हैं, बच्चों को अपने हाथ में रखना है, क्योंकि बच्चे गुम हो जाएंगे तो फिर आपका भाव समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने अपने साथ कीमती वस्तु नहीं लाई होगी, ताकि बंदर और चोर आप पर हमला नहीं करेंगे। यात्रा में सब लोगों को भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। यात्रा के यात्रियों को सब इकट्ठा रखने के लिए हम लोग आगे कीर्तन करते हैं इसको पकड़ते हुए, तो उसके साथ में सबको रहना है। आप बहुत पीछे रहेंगे तो शायद असुरक्षित हो सकते हैं और गुम भी हो सकते हैं और यात्रा आपकी मिस भी हो सकती है। इसलिए यात्रा में एकत्र होना बहुत ज़रूरी है। जितना तेज चलेंगे उतना आप साथ में रहेंगे, नहीं तो पीछे बहुत रहेंगे तो हम पता किसी गली में चले जाएंगे तो आप हरे कृष्णा। यात्रा में कथा करने वाले व्यक्ति के पीछे नहीं बैठना चाहिए, सामने बैठना चाहिए, और कथा करने वाले व्यक्ति के ऊपर के सर पर नहीं बैठना चाहिए, जैसे वहाँ नहीं बैठना चाहिए। हरे कृष्णा। यात्रा में अपनी इंद्रियों को सतर्क रखना है, क्योंकि धाम जो है वो सभी इंद्रियों के माध्यम से आपके आत्मा में अनुभूति दिलाएगा। जैसे पांच हमारे इंद्रिय है ना, आंखें, कान, जिह्वा, त्वचा और दृष्टि है, और क्या, आंखें, कान, नाक। तो इन पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान है उसको ग्रहण करते रहते हैं। वॉट एवर नॉलेज आपको, जो भी ज्ञान मिलना चाहिए वो आपको इन पांच गेट से ही प्राप्त होता है। उस प्रकार से धाम का जो अस्तित्व है, धाम का जो महात्म्य है, वो इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश करेगा। इसलिए सभी इंद्रियों को सतर्क रखिए। देखिए आप कितने सुंदर पंचों की आवाज़ आ रही है, आंखों से देखेंगे इतने सुंदर सुंदर दिव्य वृक्ष आपके चारों तरफ हैं यहाँ पर, और ये पंछी क्या बोल रहे हैं, राधे राधे। ये भी समझने के लिए थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को आपको ग्रहण करना है, कान से सुनना है, आंखों से देखना है, धाम का जो अनुभव है वो पूरी तरह से आपको ग्रहण करना है। और इस तरह से ग्रहण करना है कि ये स्थान और इसका महात्म्य और आगे आने वाले स्थान और उसके महात्म्य, स्थान हृदय में आपके साथ बंबई, दिल्ली, पुणे जाना चाहिए, तब आपका यहाँ आना सफल है। एक होता है मत्था टेक यात्रा, पता है आपको, भागना है 1-to-1, इधर भी टेकना है, उधर भी टेकना है, उधर भी टेकना है, और बॉम्बे में जाएंगे वापस तो कुछ भी याद नहीं है कहाँ गए थे। 50 जगह तो गए लेकिन पता नहीं कहाँ गए थे, कोई नॉलेज नहीं मिलता है उसका। तो हमारी यात्रा का एक नियम है कि हम लोग भले एक ही जगह जा पाएंगे, हो सकता है भगवान की इच्छा से, लेकिन उस जगह पर बैठकर कीर्तन, प्रवचन, सभी इंद्रियों से धाम का ग्रहण, उसके सार का ग्रहण, उपदेश का ग्रहण, कुछ नोट्स बनाएंगे उसके, उसको चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, धाम को पूरी तरह से हृदय में ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे उस धाम में, उस धाम से विनती करेंगे हमारे पर कृपा करने के लिए विशेष रूप से, और फिर कीर्तन करते करते हम चले जाएंगे आगे। तो ये मूलतः जहाँ पर हम बैठे हैं ये बरसाना धाम है, और बरसाना धाम में जैसे मैंने पहले आपको समझाया है कि ब्रजभूमि का अंतपुर है, बहुत ही उत्कट स्थान है जिसमें राधा रानी का निवास है, राधा रानी का माँ पिताजी का घर है यहाँ पर। राधा रानी की जो सखियाँ हैं, 8 सखियाँ प्रधान हैं उनकी, और वो सब राधा रानी के चाचाओं और ताऊ जी की बेटियाँ हैं। राधा रानी के पिताजी विश्वभानु महाराज हैं और मैया का नाम कीर्तिदा देवी है। तो उनके राधा रानी के पिताजी के 4 बड़े भाई हैं और 4 छोटे भाई हैं, और हर एक भाई को एक बेटी है, तो 8 कज़िन सिस्टर्स, वही उनकी 8 सखियाँ हैं। और राधा रानी के घर में कौन कौन है? सीदामा भैया है, राधा रानी है, और एक बहन भी है उनको, उनका नाम क्या है? अनंग मंजरी, जो हमारे दाऊजी महाराज हैं, बलराम जी, वो साख्य रस में, शांत रस में, वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करते हैं, और माधुरी रस में वो अनंग मंजरी बनकर राधा रानी की सेवा करते हैं, 5 रस में भगवान की सेवा करते हैं। तो शांत रस में वो धाम बनते हैं, दास्य में उनकी सेवा करते हैं, साख्य में मित्रता करते हैं, खेलते हैं उनके साथ, वात्सल्य में उनकी रक्षा करते हैं, मतलब जब बाहर जाते हैं तो उसको संभालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, माता की आज्ञा का पालन करते हैं कि छोटे भाई की रक्षा करनी है आपको, और स्त्री यानी कन्या के रूप में राधा रानी के छोटी बहन के रूप में जन्म लेते हैं और उनकी माधुर्य में सेवा करते हैं। तो ये पारिवारिक परिचय है उनका। और जैसे मैंने आपको बताया पहले, ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और वो यहाँ पर्वत बने 4 शिखर वाले। तो बरसाना जो है वो 4 विशेष चीज़ हैं, वो है खोर, खिरक, गिरी, गहवर, ठीक है, खोर, खिरक, गिरी, गहवर, ये 4 विशेष बरसाना के अंग हैं। खोर यानी जलाशय, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, खोर, खिरक, ये जलाशय को कहा गया, यानी खड़ी, माफ़ करना, खोर यानी कि छोटा रास्ता, छोटा सा रास्ता या गली कह सकते हैं उसको, आप खोर कहते हैं उसको। जैसे यहाँ पर क्या है, सांखरी खोर, छोटी सी गली, जो दो ब्रह्मा जी के शीश हैं जो ऐसे मिलते हैं तो एक रास्ता बनता है छोटा सा, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति एक बार एक दिशा में जा सकता है, एक दिशा में आ सकता है, उसको कहते हैं सांखरी खोर। ये बरसाने का एक विशेष अंग है। खिरक यानी जलाशय, ऐसे बहुत सारे कुंड है बरसाने में, पीली पोखर यहाँ पर है, फिर जल महल है वहाँ पर, भानोखर है, फिर धोनी कुंड है, फिर बिहार कुंड है वहाँ पर, फिर गहवर कुंड है, बहुत सारे कुंड है, रत्न कुंड है आगे, उधर देह कुंड है उत ऊंचे गाँव में, ऐसे बहुत सारे जल के आशय हैं जहाँ पर राधा रानी स्नान करती है, किसी सखियों का कुंड है, पिताजी का कुंड है। ऐसे तो दूसरा क्या हुआ, खिरक, पहला हुआ खोर, दूसरा हुआ खिरक, पहला खोर, दूसरा खिरक, और तीसरा क्या बताया मैंने, गिरी, गिरी, गिरी यानी जो 4 पर्वत बने हुए हैं उसको वर स्यानु ऐसा नाम पड़ा हुआ है, बहुत सारे नाम हैं, बृहत सानु, वर स्यानु, बरसाना, ये सब अलग अलग आचार्यों ने उनको नाम दिए, जैसे कि शांडिल्य मुनि के अनुसार बरसाना नाम दिया गया है, वृषभानु गृह जयदेव गोस्वामी के अनुसार दिया गया है, ऐसे अलग अलग आचार्यों ने उनको अलग नाम दिया, गर्ग संहिता के अनुसार वर स्यानु कहा गया है। तो वर स्यानु का एक मतलब है कि जिस घर, जिस प्रदेश में बहुत सुंदर सुंदर पर्वतों की चोटियाँ हैं, बहुत सुंदर, स्यानु यानी बहुत सुंदर, वर यानी पर्वत की चोटियाँ, और भी इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर एक सुंदर वर है श्री कृष्ण नाम का, तो और एक अर्थ है उसका ये है कि बरसाना यानी कि यहाँ पर हमेशा रस बरसते रहता है, प्रेम का रस, इसलिए बरसाना। तो तीसरा मैंने कहा गिरी, तो ये पर्वतमय प्रदेश है, चार चोटियाँ यहाँ पर हैं, बहुत आसान है चढ़ने के लिए, ऐसा कुछ हिमालय जैसी ऊंचाई नहीं है। और गहवर, गहवर जो है ये बरसाने का हार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम गहवर। गहवर का अर्थ होता है भावनाओं का विलास, मराठी में कहते हैं ना गहवर, ओवरवेलमिंग इमोशन को गहवर कहते हैं। और वो गहवर बन जो है वो मैंने कहा आपको ना, कहाँ शुरू होता है, श्रीजी मंदिर से शुरू होता है और पूरा बरसाना क्रॉस करके, चिकसोली क्रॉस करके डबारा गांव जहाँ शुरू होता है वहाँ तक गहवर वन का स्थान है। और गहवर वन श्री जी ने स्वयं अपने हाथ से बनाया है। इसकी छोटी सी बात ऐसी है कि इसमें पेड़ पौधे सब श्री जी महारानी ने अपने हाथ से लगाए हैं, उसको सिंचन किया है, उसका लालन पालन किया, देखभाल किया है। बचपन में जब श्याम सुंदर जी और राधा रानी खेलते थे तो जो होती ना वेलियाँ, क्रीपर्स, उनकी शादी पेड़ों से करते थे बचपन में खेल खेल में। और गहवर वन में ऐसी व्यवस्था है कि जो भी कुछ है वो कमान के आकार में है, कमान यानी कि आर्च, हर चीज़। अभी आपको कुछ जगह मिलेगी लेकिन उसका प्राचीन जो दर्शन है वो ऐसे कमान में बना हुआ है सब कुछ। और वो कमान, कमनीय स्थिति में सब वेलियाँ ऐसे बहती रहती हैं, पेड़ वेलियाँ पत्ते ऐसे झर रहते रहते हैं, पूरा जो सघन वृक्षावली है वो सब इसी प्रकार से बना हुआ है। तो अभी कुछ संतों ने उसको उस प्रकार से पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया है, लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से जब भगवान यहाँ पर थे, राधा रानी थे यहाँ पर, तब वो सारी व्यवस्था ऐसे कमान के रूप में थे, उसको वितान भी कहते हैं, वितान, पुष्प वितान कहते हैं उसको। और वो ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऐसे आप जा रहे हैं ऐसे कमान के अंदर से, तो वो ऐसे ऐसे जाएगा गोल 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 घूम के, सब पेड़ और वृक्ष से बना हुआ है। और एक ही बात आप समझेंगे तो भी काफ़ी है गहवर बन के विषय में, कि गहवर बन में राधा रानी सब बनाती हैं, राधा रानी की सखियाँ सब बनाती हैं, आज कहाँ मिलना है, किस जगह मिलना है, क्या लीला करनी है, सब सखियाँ तय करती हैं। उसकी नेता कौन है, ललिता देवी, उनकी असिस्टेंट है विशाखा देवी, और उन दोनों की असिस्टेंट कौन है, वृंदा देवी। और वृंदा देवी के नेतृत्व में ये सारा इंतज़ाम होता है, जैसे हमारी यात्रा के कैसे रोहिदास रवि रामचरण प्रभु का हैं, तो तय करेंगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन कीर्तन करेगा, किस दिशा में जाएगा, लाइट टर्न लेफ्ट टर्न, फिर कहाँ बैठेंगे, फिर साउंड सिस्टम कौन लगाएगा, ऐसा बहुत सारी व्यवस्था होती है ना, ये तो छोटी मोटी व्यवस्था है। उसमें तो रंग की व्यवस्था भी होती है, कौन सा रंग आज उस जगह पे होना चाहिए, कौन से रंग के वस्त्र पहनने हैं, कौन से फूल खिले हुए वन में जाना है, विच कलर वी वॉन्ट टुडे, ओके आज पीला रंग चाहिए तो पीले रंग के फूल वाले वन में जाएंगे, बहुत एलेबरेट होता है वो। फिर वो पुष्पशैया बनाते हैं, फ्लावर बेड, फिर फ्लावर झूला, पुष्प झूला, फिर अलग अलग पदार्थ बनाते हैं, आज क्या बनना है मेन्यू, फिर आज कौन सा राग में गाना है, आज कौन से ताल में नृत्य करना है, कौन से वाद्य बजाने हैं, कौन कौन से वाद्य बजाएगा, इस सारी डिटेल विस्तार पूर्वक व्यवस्था ना सखियाँ करती हैं। राधा रानी का श्रृंगार कौन करेंगे, कृष्ण का कौन करेंगे, कौन उनको लेकर आएंगे, उस कुंज के द्वार में कौन खड़े रहेंगे, द्वार पे हाँ, किसको एंट्री देना है, किसको नहीं देना है, लड़के आएंगे तो उनको मना करना है, ये सब कुछ पूरी व्यवस्था होती है उसके अंदर बहुत ही डिटेल में। और वृंदा देवी के पूरे ब्रज में ऐसे हजारों स्टोर हाउसेस हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के वस्त्र, अलंकार, क्या क्या वहाँ पर स्टोर करते हैं, तंबू बांधना है, क्या करना है, सबका दिव्य व्यवस्था है, ऐसा नहीं वो फटा पुराना हाँ डर्टी टेंट, ऐसा नहीं होता है, सब दिव्य वस्तुएं हैं, प्रकाशमान, सच्चिदानंद, चिन्मय, इस प्रकार से मणिकंचन से सब व्यवस्था होती है, एवरीथिंग इज डैजलिंग विद ज्वेल्स। तो एनीवेज, जो एक बात आपको ग्रहण करनी है गहवर वन के विषय में वो ये है कि वो वितान में, वितान पूर्वक जो रास्ते बने हुए हैं उसके अंदर वो मिलने की जगह है, सुंदर व्यवस्था की गई है। और उसमें सब व्यवस्था राजारानी की तरफ से की गई है गहवर वन में विशेष रूप से, लेकिन श्री कृष्ण भगवान उनको हाथ पकड़कर लेके आते हैं। एक हाथ से उनको पकड़ा है उनका हाथ, और दूसरे हाथ से वो वेलियों को सवार रहे हैं। लता बेली द्रुम को सवारा करेंगे, ऐसे उठाएंगे फिर आगे चलेंगे, फिर ऐसे उठाएंगे फिर आगे चलेंगे। ये उस धाम गहवर वन की विशेषता है। अब थोड़ा सा मन में देखिए, श्री कृष्ण भगवान सज सज के राधा रानी पूरा श्रृंगार करके उनका दिव्य कर कमल पकड़ के घुंघरू बज रहे हैं छुम छुम छुम, करधनी में जो गुच्छा लगा है वो भी बज रहा है, दोनों चल रहे हैं और एक हाथ से कृष्ण भगवान बेलियों को सवार रहे हैं और वो अंदर जा रहे हैं घूमते घूमते और गीत गाते हुए। यहाँ पर कोई वाक्य पद, हम जो किसे पद्य में प्रवचन दे रहे हैं ना, वी आर स्पीकिंग इन प्रोज। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर चीज़ काव्य में होती है, हर चीज़ यमक, एवरीथिंग इज राइम्ड वेरी वेल, और वो गीत में ही बोलते हैं, दूसरे से छंद में बोलते हैं, ब्यूटीफुली मीटर्ड एंड राइम्ड। तो वैसे ही संवाद हो रहा है और वैसे गीत गाते गाते अंदर ले जा रहे हैं, तो अंदर सब सखियाँ इंतज़ार कर रही हैं, वहाँ पर उनका स्वागत होता है पुष्पों से, इत्र से, आरती से। फिर दोनों पुष्पशया पर विराजते हैं, फिर गीत गाए जाते हैं, नृत्य होता है, फिर समय समय पर कुछ पीने के लिए ड्रिंक, भोजन, फिर झूला, फिर कौन झुलाएगा उनको, फिर कौन गीत गाएगा, इस प्रकार के रात भर के कार्यक्रम होते हैं, हर रोज होते हैं, एवरीडे फेस्टिवल। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप कहेंगे बीच में कुछ करते हैं क्या, मतलब बीच में कुछ नहीं करते हैं, हमेशा एक या तो तैयारी करते हैं या तो उसको मनाते हैं, दोनों में से एक, या तो फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं या तो फेस्टिवल को मना रहे हैं, दोनों में से एक ही है। थोड़ा बहुत विश्राम करते हैं बीच में, लेकिन चलते रहते हैं। अच्छा लगेगा ना आपको ऐसी जगह जाने के लिए जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सबको ऐसे जगह चाहिए जहाँ पर कोई गम न हो, कोई कष्ट न हो, कोई पीड़ा न हो, कोई यातना न हो, किसी के द्वारा न हो, खुद के द्वारा न हो, प्रकृति के द्वारा न हो, बुढ़ापा न हो, बीमारी न हो, झगड़ा न हो, युद्ध न हो, भूकंप न हो, आतंक न हो, बॉम्ब ब्लास्ट न हो, मौत न हो, जन्म न हो, कितनी चीज़ें हैं दुखदायक। तो हमारे उपेंद्र बाबू आए क्या यात्रा में, उनको एक गीत बहुत प्यारा है, तो यही गीत सुनकर वो वापस आए थे दुनिया में, दुनिया छोड़ के जाने का विचार था उनका। जब ये गीत सुना तो उनको एक ऐसा आशा का पल्लव यानी आशा का दीपक जला उनके मन में, हो सकता है ऐसी भी कोई जगह हो जहाँ पर गम ना हो, आंसू ना हो, आंसू भी हो तो प्रेम के आंसू हो, आनंद के आंसू हो, और वो ऐसी जगह है, उसको कहते हैं गोलोक वृंदावन, वो वैकुंठ भी कहते हैं। यहाँ पर कुंठ यानी कुंठित वातावरण नहीं होता है, दिन रात केवल आनंद ही आनंद है। कभी कभी ना हम लोग ने इतना इतना दुख हमने जीवन में अनुभव किया है तो कभी कभी विश्वास भी नहीं होता कि अभी ऐसी जगह होगी क्या, चारों ओर तो सब दुखी दुख दिखाई पड़ता है, लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, जब संतों के संग में आते हैं तो वो उसका पता बताते हैं कि वो जगह कहाँ पर है। फिर आप पूछेंगे जाना कैसे है, बोलेंगे जाना कैसे, उसका मार्ग भी बताते हैं। फिर बताने के बाद बोलते हैं चलो हम भी जा रहे हैं वहाँ पर, हमारे संग चलो। तो हम जिस दिन उस जगह जाने का संकल्प करते हैं उसी दिन से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शायद आप जा नहीं पाएंगे वृंदावन धाम यात्रा करने के लिए, आप अगर बम्बई में बैठ के सोचा कि मुझे वृंदावन जाना है, मैं जाना चाहती हूँ, जाना चाहता हूँ, उसी समय से उस विचार से आपके हृदय की शुद्धि आरंभ हो जाती है। इतनी पवित्र जगह है ये, और विशेष रूप से ये अति पवित्र क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक बार आने से आपको दोबारा पृथ्वी पर इस जन्म के बाद दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। ऐसा ये खोर खिरक गिरी और गहवर का इंतज़ाम यहाँ पर है आपके लिए, राधा कृष्ण के आनंद के लिए। हम लोग कौन है? हम लोग प्रेक्षक है सब लोग, वी आर ऑल ऑडियंस, यू वांट टू सी, फ्रंट लाइन बुकिंग करके बैठना है, फ्रंट सीट। और राधा कृष्णा विल कम, कृष्णा विल लीड हर इन द फॉरेस्ट। ऐसा यहाँ पर सिचुएशन है। पहले पर्वत पर भानुगढ़ उसका नाम है, उसमें राजा रानी का घर है, विश्वभानु महाराज रहते हैं वहाँ पर। उसके अगले गढ़ पर दानगढ़ नाम है उसका, उधर दान लीला होती है। संक्षेप में बता दूंगा आपको, मुझे पता नहीं आप कहाँ कहाँ अभी इसके बाद पहुँच पाएंगे। दानगढ़ में भगवान आकर राधा रानी से प्रेम का दान मांगते हैं, इसलिए उसको दानगढ़ कहा गया है। आगे जाकर विलासगढ़ है, विलासगढ़ में विलास यानी प्रेम विलास, यानी झूला झूलते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, भोजन करते हैं, हर प्रकार का आनंद मान लेते हैं, विशेष करके झूला। लेकिन हर प्रकार की विलास लीला वहाँ पर होती है। वो एक ही पर्वत ऐसा है अभी पर अभी भी उस पर चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग जवान हैं वो माउंटेनिंग कर सकते हैं, वो उसमें चढ़ के जा सकते हैं, बाकी लोग वहाँ पर सहसा पहुँच नहीं पाते हैं। उसके आगे एक उत्कट पर्वत है, उसका नाम है मान मंदिर है। और मान मंदिर बहुत ही विचित्र जगह है। जैसे जो प्रेम है उसको प्रेम का एक नाम है महाभाव, और महाभाव में आठ प्रकार के प्रेम के अलग अलग अनुभव होते हैं, जैसे प्रेम, रति, स्नेह, भाव, ऐसे अलग अलग। उसमें एक मान भी होता है, और हमारे जीवन में मान जो होता है वो हम लोग अभी किसी कोई आपने बोल दिया मुझे तो मुझे गुस्सा आ जाता है, कोई मनपसंद बात नहीं हुई तो भी क्रोध आ जाता है, कोई वाद विवाद हुआ तो अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्रोध है। लेकिन मान का अर्थ यह है कि वो जो एक प्रकार का क्रोध जैसी भावना है वो निर्माण करते हैं केवल प्रेम को बढ़ाने के लिए। जब रूठ के बैठ जाते हैं तो प्रेम और बढ़ता है, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है घर पे। लेकिन प्रेम लीला में जब मान होता है तो प्रेम की वृद्धि होती है। तो राधा रानी मान करती है केवल श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए। वो कोई मानिनी, कोई अहंकारी स्त्री नहीं है जो किसी पुरुष को अपने उंगलियों पर नचा रही है, वो बेचारे चरणों में गिर रहे तो उसको और चिढ़ा रही है और उनको उकसा रही है, ऐसे नहीं है। ये बड़ी दिव्य बातें हैं सब। तो वहाँ पर कई प्रकार के कारण हैं जिसके वजह से राधा रानी मान करके रूठ जाती है और उस पर्वत पर जाके बैठ जाती है। जैसे हमारी कैकेयी क्रोध भवन में जाके बैठी थी, पता है ना आपको, जब उनको मंथरा ने गलत गाइडेंस दिया तो वो काले वस्त्र पहन के जमीन पर क्रोध भवन में जाके बैठी थी। तो उसका वो लोकेशन है जहाँ पर वो चीज़ प्रकट करनी है, क्रोध प्रकट करना है तो क्रोध भवन है। इतना लग्जरी अभी किसको नहीं है, उनको दो रूम के फ्लैट में सभी सारे भाव उधर ही प्रकट करने हैं, ऑल इमोशंस इन वन रूम। हमारा बचपन में एक घर था, एक रूम 12x10, वहाँ पर हम लोग 10 लोग रहते थे, 25 साल तक रहे हम लोग 10 लोग एक कमरे में, बाथरूम भी उसके अंदर ही था। तो सारे प्रकार के भाव एक ही कमरे में प्रकट होते थे, हर प्रकार के। लेकिन राजा राजाओं के पुराने युग में अलग अलग भाव अलग अलग जगह पर प्रकट करते थे। तो मानगढ़ मान लीला के लिए बनाया गया है। तो उसके कई कारण हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कृष्ण भगवान राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, राधा रानी उनका श्रृंगार करती है, फिर कृष्ण भगवान को राधा रानी कहती है कि अब मेरे सौंदर्य का वर्णन करो। तो कृष्ण भगवान इधर उधर देखते हैं, इनका सौंदर्य इतना श्रेष्ठ है तो किससे तुलना करें, फूल से करें, क्या करें, सितारों से करें, देखते चांद दिखाई पड़ते हैं। तो चांद कहते हैं आपका चेहरा चांद जैसा है, और आप में से कितनी स्त्रियाँ यहाँ पर बैठी हैं, अगर आपके पतिदेव आपको कहेंगे आपका चेहरा चांद जैसा है तो आप पूछेंगे कि क्या बनाऊँ आपके लिए, आज क्या चाहते हैं बताओ, व्हाट डू यू वांट, कुछ ना कुछ करूँ मैं आपके लिए आज। लेकिन चांद की उपमा देने पर तुरंत राधा रानी को मान होता है। तो वो कहते हैं कि चांद में दाग होते हैं, हमारे सौंदर्य में दाग नहीं है। चांद का क्षय होता है कि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक धीरे 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 एक दिन दिखते नहीं है। चांद को ग्रहण लगता है, हमारे सौंदर्य में कोई क्षय नहीं है, कोई ग्रहण नहीं है। चांद पर प्रकाशित है, हमारा सौंदर्य हमारा खुद का है। ऐसे कई कारण देती हो। और विशेष बात यह है कि हमारी जो राइवल है चंद्रावली, उसके नाम में चंद्र है। लड़कियों को औरतों को किस बात पर गुस्सा आएगा इसका प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। अभी वो जो ऑपोजिट सखी है उसके नाम में चंद्र है, चंद्रावली, इसलिए उसका उसका हाफ नाम का तुल्ला भी नहीं हमारे से होना चाहिए, ऐसा है। तो वो रोट कर बैठ जाते हैं। फिर ललिता देवी कृष्ण भगवान एकदम, अरे मैंने क्या सोचा था कि खुश हो जाएगी, और हुआ क्या, उल्टा हो गया पूरा। बड़े परेशान हो जाती है। ललिता देवी को भेजती है, ललिता देवी उनको मनाने का कोशिश करती है, तो क्या करती है, दो स्टेप और ऊपर चढ़ जाती है। जैसे एक यहाँ इस लेवल पे गए मनाने के लिए, तो उसको छोड़ने के लिए और दो चढ़ जाती है। तो फिर लौट के और कृष्ण के पास आती है, कृष्ण उसको दोबारा भेजते, जाओ और कोशिश करो, तो और जाते तो और ऊपर चले जाती है। फाइनली वो एकदम मान मंदिर के मानगढ़ के चोटी पर पहुंच जाती है, और ललिता देवी कहते मैं थक गई अभी, ऊपर नीचे करके, आवत जावत हार गई रही, कितनी बार ऊपर जाऊँ, कितनी बार आप भेजते हो वो ठुकराती है, आप भेजते हो वो ठुकराती है। फिर ललिता देवी कृष्ण के कान में कुछ बोलती है, तो अचानक कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं, ललिता भी चली जाती है, राधा रानी रूठ के बैठी हुई। उधर एक चित्रपट है, हो सके हम पहुँच जाएंगे वहाँ तक, तो वो चित्रपट है, ऐसे राधा रानी रूठ कर ऐसे बैठी हुई है, उनका हाथ ऐसे है, तो वो हाथ लेकर ललिता देवी कृष्ण को लेकर यहाँ से आ रही है, और इनका लेफ्ट हैंड और उनका राइट हैंड ऐसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो उधर देख रही है। ऐसा बहुत सुंदर चित्रपट है, वो बहुत प्राचीन चित्रपट है, वो एकदम प्राचीन, जिसमें इस जगह का भाव व्यक्त हुआ है। पर कुछ देर बाद वहाँ एक मोर आता है और बहुत सुंदर नृत्य करने लगता है। जैसे मोर आता है, बहुत सुंदर सुंदर कोमल बिंदु आकाश से गिरने लगते हैं, बहुत नॉट वेरी हैवी रेन्स, वेरी प्लेजेंट। आज सुबह मंगला में कितने लोग गए थे, हाँ कैसा बारिश थी, मंद मंद, बहुत सुंदर, आपको भीगने को भी अच्छा लगेगा, शीतल से, बहुत ठंड भी नहीं थी, कोमल कोमल, शीतल शीतल। तो वैसे वर्षा होने लगी, थोड़े बादल आने लगे और मंद मंद आवाज़ करने लगे, गड़गड़ाहट की, बहुत भयंकर नहीं, वेरी प्लेजेंट आवर ध्वनि करने लगे। तो वो देखकर और मोर इकट्ठा हो गए, सब मोर मिलकर नाचने लगे, बहुत सुंदर नृत्य करने लगे, और राधा रानी रूठ कर बैठी हुई। तो फिर सखियाँ वहाँ पहुँचती है, कहती है अरे श्री जी देखो, ये सुंदर मोर आए नाच कर रहे हैं। तो पहले वो देखने को भी तैयार नहीं, फिर बहुत मनाते हैं, देखो देखने में क्या है, वो काला कलूटा नहीं है इसके अंदर, वो गया जिस पर तुम रूठी हुई हो, ये तो मोर है। ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं उनको। जब देखते हैं तो बड़ा उनको अच्छा लगता है, मन मोहित हो जाता है। तो जैसे ही वो मोर देखते हैं कि राधा रानी बहुत प्रसन्न हो रही है, तो और अच्छी तरह नाचते हैं, है ना। तो गाने वाला अगर लोग बोलेंगे वाह 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 वाह, तो गाने वाला और एक जोर से दिल से गाने लगता है, प्रतिसाद के रूप में, है ना। तो उस तरह से इनकी वाह वाह, इनका अप्रिसिएशन, उनका नृत्य जो है बढ़ते बढ़ते जाता है। बाद में इतनी प्रेरणा होती है राधा रानी को, इतनी खुश हो जाती है वो स्वयं नीचे उतरती है और मोर के साथ नाच करने लगती है, और इतना सुंदर नृत्य होता है उनका, बहुत देर तक झूम झूम के गई मोर मोर। फिर इनके साथ में मोरनी आ जाती है, यहाँ से मोर आ जाते हैं, तो बहुत बड़ा माहौल खड़ा होता है। फिर सखियाँ वाद्य बजाती हैं, और फिर वो मोर के साथ में जो पहले आया था उसके साथ राधा रानी नृत्य करने लगती है, बहुत देर तक नृत्य करती है, और फिर एंड में उनकी ऐसी पोजिशन हो जाती है, इनका ऐसा और उनका ऐसा, और मिलके एक कमान तैयार होती है। तब उनके ध्यान में आता है कि मोर और कोई नहीं है, ये श्याम सुंदर हैं। तब तक उनका मान कहीं दूर चला गया। तो वो मोर कुटी वहाँ पर है, जहाँ पर वो मोर बनकर श्याम सुंदर जी आए थे, और वहाँ पर उन्होंने नृत्य किया था, और राजारानी को रिझाया था। तो ये एक प्रकार का लीला है, मोर लीला। दूसरी लीला ऐसी है कि एक दिन राधा कृष्ण वहाँ खड़े हैं ऐसे, और मंद मंद हवा चल रही है, और कहते हैं राधा रानी का और कृष्ण का जो उत्तरीय वस्त्र है ना, जो सब पहनते हैं ऊपर, वैसे ऐसे उड़ रहा है हवा में, हवा आ रही है और वो दोनों के वस्त्र ऐसे उड़ रहे हैं हवा में, फिर वापस बिंदु गिर रहे हैं, फिर गड़गड़ाहट हो रही है। तो राधा कृष्ण को लगता है कि अपने अपने मोरों को, मोरनियों को ले आओ, तो वो अपने मोर और मोरनियों को लेके आते हैं। फिर राधा रानी और सखियाँ अपने घुंघरू और अपने कंगन उससे संगीत देना शुरू करते हैं, वही म्यूज़िक है। फिर कृष्ण मुरली निकालते हैं, मुरली के साथ देते हैं, फिर वो दिव्य संगीत की ध्वनि में सारे मोर मोरी नाच करने लगते हैं। बहुत सुंदर आनंद राधा और श्याम सुंदर लेते हैं। तो उसके बाद राधा रानी कृष्ण को कहती है कि तुम मोर बन के नाचना। फिर कृष्ण मोर बन के नाचते हैं, फिर राधा रानी स्वयं मोरनी बन कराती है, नॉट लाइक वो मनुष्य है लेकिन मोर जैसे नाच कर रही है, वो एक लीला है। एक में वो मोरनी स्वयं बन कर आती है, एक लीला में मोर मोरनी का वेश धारण करके आते हैं। हमारे नाटिका में देखे ना, पीछे पंख लगाते हैं वैसे ऐसे करके आते हैं, तो वो वेशभूषा करके आते हैं। और एक में मोर और मोरनी स्वयं बन के आते हैं और उसमें नृत्य करते हैं। ऐसे कई प्रकार की लीलाएँ हैं। कभी कभी बैठ कर नृत्य मोरों का देखते हैं, कभी खुद मोर मोरनी बनकर नाचते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार की लीला वहाँ पर होती है। तो मोर लीला जो है वो नित्य रूप में चलती है। हमारे पास तो एक दो तीन विकल्प हैं, लेकिन उनके पास अनंत विकल्प हैं, और नित्य रूप में वहाँ पर मोर लीला चलती रहती है राधा रानी की और कृष्ण भगवान की। तो वो हो गया आखिरी मान मंदिर, जहाँ पर हमको देखना है कि हमारा मान हमारे स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए होता है, लेकिन राधा रानी का मान कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए होता है। हमारा हर मान यहाँ का जो होता है वो कुछ षड्यंत्र होता है, वो कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ बदला लेने के लिए, कुछ द्वेष को व्यक्त करने के लिए हम अपने क्रोध का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मान जो है वो भी दिव्य है, वो भी कृष्ण की सेवा में है, वो भी कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर हर चीज़ जो है ना वो एक फोकस्ड है, हर चीज़ का एक केंद्र बिंदु है श्री कृष्ण और उसका प्रेम। हर घटना, हर क्रिया, हर विचार, हर योजना श्री कृष्ण के लिए है और इनके प्रेम के लिए है बस। फिर आगे एक दोहनी कुंड है, वहाँ पर तो नहीं पहुँच पाएंगे, बहुत दूर है यहाँ से। वो वृषभानु महाराज का कुंड है, और वहाँ पर वृषभानु महाराज अपने लाखों गायों का दूध धोते हैं, दोहते हैं, यानी कि दोहनी कुंड उसका नाम है। तो वहाँ पर एक बार कृष्ण गए, जहाँ पर विश्वानु महाराज अपने गायों का दोहन अपने सेवकों से कर रहे थे, खुद भी कर रहे थे, राधा रानी भी वहाँ थी, सखियाँ भी थी। तो कृष्ण वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि आपकी एक गाय का दूध मैं निकालता हूँ। तो दूध तो फिर राधा रानी ने उनके बछड़े को पकड़ लिया और देखने लगी, और कृष्ण अपने एकदम प्रोफेशनल ग्वाल बाल पोजिशन में बैठ गए और दूध निकालने लगे। राधा रानी बड़े अचंभित हो गई, कितनी कुशल है ये दूध निकालने में, बड़े अचंभित होते देखने लगी। तो कृष्ण बहुत ना क्या कहते हैं उसको, नटखट है बहुत ऐसे दूध निकालने से, उनको पता भी नहीं कभी क्या होने वाला है। तुरंत उसको मोड़ के राधा रानी के मुंह पे दूध की धार फेंकते हैं, और वो दूध का श्रृंगार के ऊपर दूध के छींटे पड़े हुए हैं, उतना सुंदर राधा रानी दिखती है। वो शर्माती है तो फिर दूध देना बंद करके देखते रहते, हाउ नाइस, हाउ ब्यूटीफुल। वो लीला वहाँ पर है दोहनी कुंड। उसके पास में एक बिहार कुंड है, गौरी कुंड भी कहते हैं उसको। तो एक विशेष बात यहाँ की है कि यहाँ पर सभी देवता, सभी ऋषि मुनि, जितने संत लोग हैं जो भगवान को चाहते हैं, वो सब लोग आते हैं पुकारने के लिए राधा रानी को। सुन लो टेर हमारी, ओ वृष भानु दुलारी, हे राधे हमारी पुकार सुनो, नंबर वन। और नंबर टू, सब लोग सखी बनकर आते हैं, शंकर भगवान भी वहाँ पर आकर अपना श्रृंगार कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ जम नहीं रहा था। लेडीज अपना श्रृंगार अपनी तरह से करती हैं, लेकिन अगर कोई पुरुष अपना श्रृंगार स्त्री की तरह करने का प्रयास करेगा तो कू 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 आवाज आ रहा है उसके अंदर। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो। हाँ बस, तो वो उनको कुछ जम नहीं रहा था सखी का श्रृंगार करने में, तो उसने में गौरी जी प्रकट हो गई, पार्वती जी। पार्वती जी का नाम गौरी है। वो आते ही उनका गौर तेज वो सब छा गया उधर उस कुंड की जगह पर। और वो कहते हैं, अरे आप पुरुषों को क्या पता है सखी कैसे बनना है और श्रृंगार कैसे करना है, आओ मैं सिखाती हूँ आपको, मैं करूँगी आपका श्रृंगार। तो पार्वती जी शंकर जी अपने पति देव का सखी के रूप में श्रृंगार करती हैं, अलंकार पहनाती है उनको, लहंगा फरिया पहनाती है, अच्छा घूंघट ओढ़ देती है उनके लिए, चुनरी ओढ़ देती है, बोलते अभी जाओ अभी सही है, यू कैन गो नाउ। तो शिव जी वहाँ पर से गोपेश्वर, हाँ मतलब गोपी बनकर वहाँ से आगे जाते हैं और पुकारते हैं राधा रानी को, सुन लो टेर हमारी ओ वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु की दुलारी हमारी पुकार सुनो। आगे जाके कुछ मिलना मिलना नहीं, कुछ बात बात नहीं करनी है, खाली पुकारते रहना है बस। पुकारने के लिए इतना श्रृंगार है, ऐसा नहीं कि झोपड़ी में बैठ के लहंगा चादर पहन के पहनना है, पुकारना है। वो भी सखी बनकर श्रृंगार करके जाते हैं केवल पुकारने के लिए, ताकि उनकी दृष्टि हमारे पर पड़े। कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम, हे वृषभानु दुलारी कब आपकी कृपा का कटाक्ष हम पर पड़ेगा, कब हमारा उद्धार होगा, कब आप हम हमारी ओर आप मुड़कर देखोगे। सब देवता लोग उसके लिए आते हैं, महान महान व्यक्ति संत लोग वहाँ पर पुकारने के लिए आते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट श्री कृष्ण भी यहाँ पर सखी बनकर आते हैं उनको पुकारने के लिए, श्यामा सखी बनकर आते हैं। तो वो बिहार कुंड है जहाँ पर शिव जी का श्रृंगार गौरी जी ने किया था। फिर वहाँ पर मान मंदिर के नीचे गहवर कुंड है, बहुत सुंदर कुंड है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर कैसे वृक्ष हैं देखो, ये बरगद का पेड़ है, वो कदम का है, ये पीलू का है, ये भी कुछ पता नहीं कदम जैसा है। इसमें इस इलाके में सब प्रकार के पवित्र वृक्ष हैं, जैसे वहाँ पर भी है, पीपल का है, बरगद का है, आम का है, हाँ कदम है, तमाल है, हर प्रकार गोलेर है, हर प्रकार का वृक्ष वहाँ पर है। ये वृक्ष जो है बड़े दिव्य हैं। हाँ ये वृक्ष जो है उनके तीन प्रकार के अंडरस्टैंडिंग है, एक तो ये स्वयं राजा रानी है, दूसरे ये गोपियाँ हैं, तीसरे ये ऋषि मुनि हैं जो वृक्ष बनकर यहाँ पर भजन कर रहे हैं और रात के समय पर पूरा श्रृंगार करके गोपी बनकर रास्ते में प्रवेश करते हैं, फिर दिन में वृक्ष बनकर भजन करते हैं। राधा कुंड के किनारे पांडव लोग वृक्ष बनकर भजन करते हैं। हर पत्ता यहाँ का राधे राधे पुकारता है, हर जीव पुकारता है। तो ये और लास्ट अंडरस्टैंडिंग है कि ये कल्प वृक्ष है, इसके सामने खड़े होकर आप कुछ भगवान की भक्ति की इच्छा करेंगे वो पूरी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आने के बाद में ऐसी मूर्खता कभी भी मत करना कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, मेरे बेटे की शादी हो गई उसको बच्चा हो जाए, उसको मोटरसाइकिल चाहिए वो मिल जाए, ऐसी प्रार्थनाएं यहाँ पर मत करना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि राजा के पास जाएंगे और कहेंगे एक रोटी खिला दो, तो भूख लग रही है, सो के राजा देव आपको रोटी देगा, लेकिन राजा मन में क्या सोचेगा, अरे तुम्हारे पूरे जीवन भर के भोजन की व्यवस्था मैं कर सकता हूँ और तुम मुझे एक रोटी मांग रहे हो, तो किसकी मूर्खता है इसके अंदर। देने वाला तो तैयार है लेकिन मांगने वाला को पता ही नहीं क्या मांगना है। मांगने का भी एक आर्ट होता है, आर्ट टू ऑल्सो बैग। यहाँ पर भिक्षुक होने का भी कला है, उन सब लोगों को यहाँ पर भिक्षुक होकर आना है, सारे अहंकार की टोपियाँ निकाल कर आना है। तो कल्प वृक्ष के साथ में आप खड़े रहकर वो इच्छा करोगे भगवान की भक्ति में, जैसे गोपियाँ हैं, ब्रजवासी बालक हैं, बाल हैं, मैया हैं, वो और कुछ नहीं सोचती लाइफ में, उनके जीवन में और कुछ विचार ही नहीं, केवल कृष्ण कृष्ण और कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है, जब हर गतिविधि कृष्ण है। कल जो लीला हुई वो आज वो गाते हैं और आज जो हुई वो कल गाते हैं, मंथन करते हुए सब गीत गाते हैं, उनके कंगन के म्यूजिक बजते बजते उसमें गीत बनाकर गाते हैं वो, और हमेशा उसकी याद में रहते हैं। हमेशा उनकी स्मृति है, उनका ही विचार है, इतना प्रेम है उनका। जैसे किसी लड़के का किसी लड़के से प्रेम होता है तो पढ़ाई चल रही है, किताब खोलेंगे तो उसका ही चेहरा दिखता है ना। कई लोगों ने अनुभव किया होगा इसका, कहीं भी देखेंगे तो वही दिखता है और उसे भी वही दिखती है। ये प्रेम का लक्षण है। यहाँ पर विकृत स्वरूप में है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ऐसा ही है। यहाँ पर विकृत है, वहाँ पर सही चीज़ है, वास्तविक स्वरूप है। तो वो मांगना आप चीज़ जो आपके अंतिम कल्याण के लिए आवश्यक है। डोंट आस्क एनीथिंग विच इज़ टेम्पररी। वो चीज़ जो मिलेगी आपको मांगने के बाद में, वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगी, आपको छोड़ के चली जाएगी, ऐसी वस्तु यहाँ पर मत मांगना। जो जाने ही वाली है, जो छूटने ही वाली है, जिसका कोई आप भोग नहीं कर सकते, जो आपके साथ में टिक नहीं सकती है, ऐसी कोई भी वस्तु आप यहाँ पर मत मांगना। यहाँ पर केवल चिन्मय वस्तु मांगना, चिरंतन, जो आपके साथ जाएगी, जो आपके स्तर पर, आत्मस्तर पर मिलेगी, आत्मस्तर पर रहेगी, आपके साथ जाएगी जहाँ पर भी आप जाएंगे। तो इसके लिए कल्प वृक्ष है, इसके सामने बैठकर आप इच्छा करेंगे तो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। इनको गले भी मिलना चाहिए बड़े प्रेम से, क्योंकि आपके मित्र हैं। ये पेड़ों में ऐसा गुण है कि इनके जहाँ पर ये हैं उस स्थान पर जो भी लीला होती है उसको वे देखते रहते हैं, और वो लीला का जो सार है वो ग्रहण करते हैं, द एसेंस ऑफ द पास्ट टाइम्स। और जो इनके संग में आता है, जैसे हम लोग आप आए हैं इधर बैठने के लिए, उनको वो वातावरण निर्माण करते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमेशा कथा जो है धाम में कमरे में मत करना। कमरे में कर सकते हैं, करने में कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना धाम में वृक्ष के नीचे बैठकर कथा करना। इसे विस्तार में समझाया था मुझे एक बार उन्होंने, क्योंकि धाम में जब वृक्ष में बैठते हैं हम, वृक्ष के नीचे, तो वृक्ष का जो आध्यात्मिक वातावरण वृक्ष हमको दे रहे हैं, वाइब्रेशन कहिए उसको, एटमॉस्फेयर कहिए, उसका लाभ होता है सुनने वाले को और बोलने वाले को भी। ऐसे दिव्य यहाँ पर वातावरण है, ये मत देखना कि धूल है, पत्ता है, कचरा है, बंदर है, ये वो है, दिव्य वातावरण है। सभी वृक्षों के, सघन वृक्षावली के सान्निध्य में हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये पेड़, तो इसकी बात कहाँ से निकली थी, ये सब पेड़ या तो वृक्ष है, या तो गोपी है, या तो राधा रानी स्वयं है, या तो भक्त हैं, या तो कल्प वृक्ष हैं। तो ऐसा गहवर कुंड की बात हमारी चल रही थी। तो गहवर कुंड जो है, जैसे चार ब्रह्मा के शीश हैं, वैसे ब्रह्मा की नाभि जो है वो गहवर कुंड है। चार शीश से मैंने बता दिया आपको, चार गढ़ हैं, और नाभि जो है वो गहरा, बहुत गहरा कुंड है, वो छोटा सा है लेकिन बहुत गहरा है। और वहाँ पर अपने गिने चुने 64 सखियों के साथ में राजा रानी रोज स्नान करती है, विद सिलेक्टेड 64। उनकी 8 सखी है ना मेन, पता है आपको हर एक सखी के असिस्टेंट कितने हैं, 1, 2, 4, 5 ऐसे थोड़ा इधर उधर। हर एक अष्ट सखी में हर एक सखी के 3 सखियाँ हैं, और हर एक उस सखी के पास जो उनकी अष्ट असिस्टेंट सखियाँ हैं, 1 करोड़ सखियाँ उनके पास, 1 करोड़। और 3 करोड़ को मिलकर एक यूथ कहते हैं, यूथ या जूथ कह सकते हैं। तो एक एक अष्ट सखी के साथ में 3 करोड़ सखियों का एक जूथ है। उनकी विशेष प्रकार की सेवाएं हैं, वो अपने अपनी सेवाएं परफेक्टली करते रहती हैं। आप बोलेंगे इतनी सेवाएं होती है क्या, सो मेनी सर्विसेज आर देयर। अरे जितने जीव हैं उतनी अनगिनत सेवाएं भगवान निर्माण करते हैं, बहुत मेटिकुलस, माइनर माइनर माइनर, माइन्यूट माइन्यूट माइन्यूट, इस प्रकार से। तो वहाँ से 64 लोगों को लेकर वो वहाँ पर स्नान करती हैं, और जब वो स्नान करती हैं तो उसके ऊपर मोरकुटी है ऐसे, यहाँ पर अगर गहवर कुंड है तो उधर मोरकुटी है ऊपर से, तो ऊपर से ग्वालबाल आकर लड्डू फेंकते हैं उनके ऊपर। हमारे मुंबई में क्या करते हैं, टमाटर और अंडा फेंकते हैं, यहाँ पर लड्डू फेंकते हैं, दिव्य लड्डू, उसको डिस्टर्ब करने के लिए। और वहीं पर मधुमंगल को उन्होंने पकड़ा था एक बार माखन चोराई करते करते, सब लोग कर रहे थे, लेकिन बेचारा वो हैवी वेट है, हैवी वेट, पकड़ा गया वो बेचारा, ज़्यादा भाग नहीं सका। इसलिए सब लोग अच्छी तरह से कसरत किया करो और स्लिम मेंटेन रहो, ताकि कभी भागने का मौका है तो अच्छा भाग सकते हो। तो वो पकड़े गए थे बेचारे, तो उनको उन्होंने बहुत पीटा था, तो उन्होंने कृष्ण बलराम को पुकारा था। तो फिर वो आए थे, उनको बोला, अरे ब्राह्मण को मारते हो तुम, ये सांदीपनी का पुत्र है, ये सांदीपनी का पुत्र का पुत्र है, सांदीपनी की कन्या का पुत्र है, नहीं नंदी पूर्णमासी का पुत्र सांदीपनी मुनि, सांदीपनी का पुत्र मधुमंगल। तो फिर डर गए सब लोग, ये भी ऐसे है, ब्राह्मण हूं मैं, अभी जनेऊ तोड़ दूंगा और शाप दूंगा सब लोगों को, ऐसा शाप दूंगा कि जिनके 7 विवाह हो गए हैं और जो बुड्ढे हैं, ऐसे लोगों से आप सबकी शादी होगी. Those who have 7 wives and they are already old with white beard, you will get married to them. सब डर जाते हैं, अरे बाप रे ऐसा होगा तो कैसे होगा. तो फिर कृष्ण कहते हैं अभी प्रसन्न करो उसको. सब लोग आके, बेचारी भोली गोपी है ना, वो सब ऐसे षड्यंत्र में फंस जाते तुरंत. ये सब ड्रामा है पूरा. फाइनली ड्राफ्टेड ड्रामा. तो वो कहते हैं कि अभी लड्डू बना के लेके आओ, कोई लड्डू रिपीट नहीं होना चाहिए, समझा ना. जो भी लड्डू लेके आएंगे सब अलग अलग होना चाहिए, अपने हाथों से बनाया होना चाहिए. तब घर जाते हैं भाग के, वो फिर लड्डू बना के लेके आते हैं और अनंत प्रकार के लड्डू वहाँ पर भोग लगाते हैं. उसको एक सिंहासन पर बिठाते हैं, उनको लड्डू खिलाते हैं, बड़े मज़े से लड्डू खाता है. तो उसकी आरती करते हैं, फिर वो आशीर्वाद देता है कि आपको बहुत ही जवान और सुंदर पति मिलेगा. वो भी लीला उसी किंड के किनारे हुई थी. वहाँ पर देवता गंधर्व आकर भी आनंद प्राप्त करते हैं. उसका एक मंत्र है, उसका मैं नोटबुक नहीं लाया, तो वो गैवर कुंड का मंत्र में लिखा है कि देवता और गंधर्व भी यहाँ पर आनंद प्राप्त करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं. तो वहाँ पर सांकरी कोरे हैं, जहाँ पर दो पहाड़ मिलते हैं, एक तरफ बरसाना है चिकसोली है, एक तरफ मथुरा आने का रास्ता है. तो वहाँ से सखियाँ सब निकलती है मटका लेकर, और जब निकलती हैं मथुरा जाने के लिए बेचने के लिए दही दूध मक्खन जो भी है, तो यहाँ से सब कृष्ण भगवान जो है ऐसे डंडा लेके निकलते हैं. रुक जाओ, हमारे इलाके से जा रहे हो और इतना कीमती कीमती मक्खन और सब बेचने को जा रहे हो, धन बनाओगे इसका, क्योंकि जा रहे हो हमारे एरिया से, तो टैक्स देना पड़ेगा आपको. ये तो मक्खन ले जा रहे हो और खुद को भी ले जा रहे हो. आपके इतने सुंदर केश हैं, सुंदर आँख हैं, सुंदर अंग हैं, इनको भी यहाँ से ले जा रहे हो आप, तो आपको हर एक अंग के लिए टैक्स देना पड़ेगा. आँखों के लिए आपको पता है ना बॉम्बे में कैसा होता है, जो होते हैं ना फिल्म स्टार हीरोइंस, उनके हर एक अंग का इंश्योरेंस होता है. आँखों के लिए इंश्योरेंस, कान के लिए इंश्योरेंस, उंगलियों के लिए इंश्योरेंस, सब इंश्योरेंस होता है, बालों के लिए होता है, कहीं कहीं हादसा हो गया कुछ नुकसान हो गया तो उसको दे कैन रिकवर. तो ये कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपके आँखों के लिए, बालों के लिए, बाजुओं के लिए, अलंकारों के लिए, अंगों के लिए, सबका टैक्स देना है, ऊपर से मक्खन दही का भी देना है. तो वो कहती है कि अरे ये तो सारी भूमि मेरे पिताजी की थी, लेकिन मेरे पिताजी से क्या करे, दुर्भाग्य से तेरे पिताजी से दोस्ती हो गई. अभी दोस्त तो कैसे होते हैं, दोस्ती दोस्ती खाते में उन्होंने अपना बहुत सारा राज्य नंद बाबा को दे दिया, इसलिए तुम किराए के राजा हो, किराए के राजा के पुत्र हो, सब हमारे पिताजी ने दिया हुआ है, तो असली मालकिन तो हम हैं, पर हमारे इलाके में आप आ रहे हो, आपको टैक्स देना चाहिए, आप किसको पूछ के आप रहे. वो साकड़ी कोर में बहस होती रहती है, अरे एक अनंत प्रकार की बहस होती रहती है, आगे पीछे नोक झोंक कहते हैं उसको ब्रज भाषा में, नोक झोंक, इट गोज ऑन कंटिन्यूसली. फिर कृष्ण भगवान कैसे ना बहुत ही चतुर हैं, जब भागने लगते ना तो फिर वो वाद विवाद छोड़ देते हैं, कुछ अलग करते हैं. जब वो वाद विवाद में हारने लगते हैं, डंडा लेते हैं और एक मटका फोड़ देते हैं राधा रानी के सर का. वो बेचारे सडनली व्हेन शी इज आर्ग्यूइंग सडनली यू गेट स्टम्प्ड, अरे आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू डू. तो फिर विशाखा देवी सामने आती, हाउ डेयर यू, कैसा कर सकते आप ऐसे, इससे उंगली नचा के सामने आती. राधा रानी बेचारी भोली है, डर जाती है इनके आतंक से. तो फिर ललिता जी सामने आती है, इनको परास्त कर देती है. फिर एक दिन उनको अरेस्ट करते हैं, बहुत सारी, क्योंकि एक एक जगह है अनंत लीलाएं चलती रहती है रोज के रूप में. तो एक दिन उनको अरेस्ट करते हैं वहाँ पर, और अरेस्ट करके कहते हैं कि जाओ कल आपको सखी बन के आना है. एक बार अरेस्ट करने का लीला है. एक बार आते हैं मटका वटका लेके, वहाँ से कृष्ण आते हैं सखाओं को लेके, वो कहते हैं टेक इट इमीडिएटली. तो वो सारे ग्वाल बाल जो है आकाश में दिखते हैं, सूरज कहाँ से आया आज, पश्चिम से आया कि पूरब से आया, ये हम क्या देख रहे हैं, ना वाद विवाद है ना कुछ है, सीधे माखन मिल रहा है रेडीमेड, व्हाट इज दिस. चलो कोई बात नहीं, सूरज को कहीं से भी आने दो, आज तो माखन तुरंत मिल रहा है खा लो. तो वो कहते हैं एक हमारी कंडीशन है, हम आपको देंगे लेकिन आपको ना हाथ से लेना नहीं, क्योंकि वो हाथ से आप लोग इतने कुशल नहीं हैं बहुत सारा गिरा देते हो। हमारा इतना मूल्यवान धन है दूध का बनाया हुआ, तो जमीन पे गिराओगे तो कैसे चलेगा? अब जाके दोना लेके आओ। क्या बताएं आपको, कदंब के पेड़ जो होते हैं ना, इन्होंने एक बार देखा कि कृष्ण भगवान हाथ से ही खा रहे हैं, उनको दोनों की ज़रूरत है। तो कई एक समय पर कदंब के पेड़ों ने रेडीमेड दोना बनाना शुरू कर दिया अपने पर शाखाओं पर। मतलब ऐसे आप शाखा है ना, सब कप्स लगे हुए हैं ऐसे, मैंने देखे हुए हैं, दर्शन किया है 30 साल पहले। कदम के पेड़ के पर ऊपर दोने लगे हुए हैं, मतलब पेड़ ही पत्ता जो है वो दोने के रूप में ऐसा प्रकट हो रहा है। बरसाना, नंदगांव, टेर कदम, हर जगह पर, एवरीवेयर, वृंदावन में अभी भी है, जंगल में अभी भी है, ये मिलेगा आपको। तो बोले जाओ दोना लेके आओ, सब लोग भाग गए, तुरंत दोना लो। भी क्या है ना, मराठी में कहते हैं ना, पढ़ता फड़ा से आज्ञा लगेज क्या सते जाते हैं। तो जब वो पेड़ में ऐसे मग्न भावना से वो पत्ते तोड़ रहे हैं दोना वाले, क्या मक्खन मिलेगा, झगड़े के बिना मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, तो निकाल रहे हैं उसको। तो सखियाँ सब जाती हैं, सबकी चोटियाँ उनकी शाखाओं को, पत्थर को बांध देती हैं, लंबी लंबी चोटियाँ होती है ना वो बांध देती हैं। तो जब वो उतरने का प्रयास करते हैं, सब लोग अटक जाते हैं, वेरी बड़ी स्टक, उनको पता नहीं कैसे अपने को रिहा करना है। तो सब लोग कृष्ण बलराम को पुकारते हैं। आमतौर पर क्या होता है, जब कृष्ण बलराम को पुकारते हैं, कृष्ण बलराम भाग के आते तुरंत उनकी रक्षा करने के लिए। ये पुकार रहे हैं, कृष्णा, बलराम, श्याम सुंदर, गोपाल, बचाओ, हम अटक गए हैं। तो वहाँ से पुकार आती है, मधुमंगल, सीतामा, बचाओ, हम अटके हुए हैं। अरे ये क्या हुआ, जो हमारे हम भरोसे के साथी है, हमेशा हमको बचाते हैं, वही पुकार रहे हैं। अरे अब क्या होगा? तो हमारे गुरुदेव ने हमको ये कहानी यहाँ तक बताई उधर, फिर कहानी को रोक दिया उधर, बोले सब लोगों भी सांकरे को पार करो, एक एक करके सब लोग धीरे 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 पार हो गए, नीचे उतर गए और बैठ गए। बोले बताओ क्यों कृष्ण बलराम पुकार रहे हैं यहाँ पर, बाकी जगह तो पुकारते आके राक्षस को मारते हैं, पर्वत को उठाते हैं, क्या क्या करते हैं, इधर पुकार रहे तो वो बोल रहे बचाओ बचाओ, हमको भी बचाओ। तो कहते हैं यहाँ पर राधा रानी का साम्राज्य है, और राधा रानी के सामने वो भी दीन हैं, वो भी असहाय हैं, वो भी पुकारते हैं सहायता के लिए, जो सब जगह मालिक हैं, बसाने में दीन हैं। तो फिर वो बहुत रोते हैं, तो कहते हैं कि एक कंडीशन है आपकी चोटियों को छोड़ने के लिए, कल तुम्हारे जो नेता है ना, बड़े होशियार बनकर आते हैं रोज, उनको राधा रानी का भेष पहन के आना है, और हमारी जो महारानी है वो उनका भेष पहन कर आएगी, गोप बनकर आएगी, और आप सबको गोपिया बनकर आना है, अच्छा चुनरी, लहंगा, फेरिया, गहना, कुमकुम लगा के आना है, बहुत सुंदर, और अपने अपने घर से मटका भर के दूध, दही, मक्खन लेके आना है, सर पे धारण करके आना है। और जब आप आएंगे, हम लोग आएंगे वहाँ से और आपको रोकेंगे, और तुम्हारा नेता जो है उसके सर की मटकी फोड़ेंगे। तो अगले दिन बांधते हैं, फिर चोटी छोड़ देते हैं, फिर सब घर जाते हैं, और फिर अगले दिन कृष्ण भगवान सखी बनकर आते हैं, सब ग्वाल बाल सखी बनकर आते हैं, और राधा रानी और सब सखियाँ ग्वाल बाल बनकर आते हैं, और फिर बहस करते हैं उनसे और मटके फोड़ के खाते हैं। उस समय श्री कृष्ण भगवान इतने भाव में विभोर हो जाते हैं कि उस समय उनको वापस अरेस्ट कर लेते हैं। तो अरेस्ट करने का मतलब क्या है, पहले जिसको अरेस्ट किया है उसका फेटा उतार देते हैं, क्योंकि फेटा पहनना मतलब एक मान की बात है ना, फेटा पहन क्या है, तो पहले जिसको अरेस्ट किया उसका फेटा उतार देते हैं। तो फेटा जब उतरता है तो लंबा होता है ना, बहुत लंबा होता है, गोल गोल घुमा के पहनते हैं उसको, तो वो फेटा ऐसा जो है ज़मीन पर जा रहा है और उसको खींच के लेके जा रहा है अरेस्ट करके, तो फेटा भी ऐसे घसीट के जा रहा है ज़मीन पर। अभी वो उसके घसीटे हुए फेटे के निशान वहाँ पर हैं, आप जाके घसीटो अपना फेटा वहाँ पर, निशान बनेगा क्या? तो निशान कैसे बनाए बताओ, सोचने वाली बात है ना, मैं मेरा फोटा उतार के किसी को खींचूँगा तो उसका वहाँ पर निशान नहीं बनेगा, क्योंकि वो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी वहाँ पर क्यों पत्थर बन के बैठे हुए हैं, ये सब लीलाओं को देख रहे हैं वो, उनके ऊपर ही चल रही है लीला सब। तो वो जब से ही कृष्ण भगवान राधा रानी के पैर पड़ते हैं तो वो मुलायम मक्खन की तरह बन जाते हैं, ही बिकम सो सॉफ्ट लाइक बटर, और जैसे चलते हैं ना, उनको लगता है कि हम फूल पर चल रहे हैं, इतने कोमल बन जाते हैं। तो ऐसे दुलायमान सॉफ्ट मक्खन की तरह नरम नरम जो पत्थर है उस पर जब खींचते हैं उसको, तो उसका निशान बन जाता है, इसलिए वहाँ पर निशान बना हुआ है। तो मटका फूट कर गिरता है कई बार, तो वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर वो सफ़ेद रंग का पत्थर है और बहुत चिकना है वो, मतलब वेरी स्लिपरी, क्योंकि तो वहीं पर वो मटका टूटा था और वहाँ पर उन्होंने खाया था अपने हाथ से टूटे हुए मक्खन से, मटके से मक्खन, और जो हाथ है ना अपना उसी को पोछा था उसको ही। तो क्योंकि वो भी उस समय बहुत मुलायम मक्खन की तरह था पत्थर भी, तो इसलिए हाथ के निशान भी है वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने वो चाट कर मक्खन खाया था। ऐसा अद्भुत पर्वत है वो, एक तरफ सांवला पर्वत है, एक तरफ गहरे रंग का पर्वत है। हरे कृष्णा। तो ये साकरी कोर हो गया है ना। अब ये पूरा घूमने के बाद हम आते हैं पीली पोखर में, जिस जगह बैठे हैं। कितने बज गए? कोई बात नहीं। तो ये पीली पोखर जो है ये वृषभानु महाराज का कुंड है। अब वृषभानु महाराज का कुंड होने के नाते यहाँ पर उनकी कन्या नहाती है, तो बड़ी बहुत लंबी कहानी है, तो थोड़ा सा बताते हैं आपको कि दुर्वासा मुनि ने राजा रानी को वरदान दिया। जब उनके हाथ से उन्होंने मट्टी खाई तो उनको दिव्य खीर खाने का आनंद प्राप्त हुआ, स्वाद भी आनंद भी, डकार भी आई तो खीर की आई। तो इतने प्रसन्न हो गए वो, पहले मट्टी खिलाने को दे रहे हैं इसलिए बहुत क्रोध कर रहे थे वो, कह रहे थे जला दूंगा, भस्म कर दूंगा। सखियां भाग गई सब। राजा रानी का इतना क्रोध क्यों करते हो, जलाने की वगैरह बात करते हो, खीर तो खा लो। तो जब खीर खाते हैं, अच्छा वो उनकी बात नहीं माने, उनको भस्म करने का धमकी दिया उन्होंने, और इन्होंने कहा तो खाया। क्यों? क्योंकि राधा रानी के एक गुण है अनंत गुणों में से, जब वो कुछ बोलती है वो इतना मधुर और इतना सम्मोहिनी भाषण करती है वो, कि दुर्वासा जैसे भयंकर क्रोधी जो मुनि है वो भी पिघल गए बेचारे, खाने लगे मट्टी को। उनको पता नहीं क्या खा रहे हैं, लेकिन उनको खीर खाने का आनंद प्राप्त होता है, तो इतने प्रसन्न हो जाते वो। राधा रानी को वरदान देते हैं कि इनके हाथ से जो भी बनेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, और जो भी उसको खाएगा वो सब रोग से मुक्त हो जाएगा, और जो भी खाएगा वो हमेशा हर समय विजयी रहेगा, ही विल बी ऑलवेज विक्टोरियस। ये बात सब ब्रज में फैल जाती है और नंदगांव में भी पहुंच जाती है। नंदगांव में यशोदा माता के भी कान तक आ जाती है, वो सोचती रहती है हमेशा मेरे कृष्ण के लिए, हाउ आई कैन गिव द बेस्ट ऑफ ऑल बेस्ट। तो विचार करने लगती है, उस दिन से मंथन करने लगती है, कैसे इस कन्या को मैं मेरे पुत्र के लिए भोजन बनाने के लिए लेकर आऊँ। दिस इज अ प्रोजेक्ट, हाँ, मोस्ट इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट। शी इज़ नॉट मैरिड, ही इज़ नॉट मैरिड, और हाउ कैन यू गेट समबडीज गर्ल टू कुक फॉर योर सन विदाउट मैरिज। बट वो विचार कर रही है कैसे करना है उसको। तो वो एक उत्सव में यहाँ पर आते हैं मान भानुगढ़ पे, उस उत्सव में यशोदा माई देखती है कि अकेली राधा रानी, कई हजारों चूल्हे जला के रखे उन्होंने, कई हजारों, और एक एक सखी को लगा दिया है, इतना सुंदर प्लानिंग है उसका, ये क्या बना रही है, वो क्या बना रही है, उसमें क्या डालना है, कि सब उसका निर्देश है, पूरा प्लानिंग योजना पूरी उसकी है, सब सखियाँ उसके अंदर इतना सुंदर काम कर रही है, वो बड़ी कुशलता से सारे बड़े रसोई को, हजारों चूल्हे वाले रसोई को वो संभाल रही है, तो और मोहित हो जाती है। और बोलते बोलते कीर्ति मैया को, जो उनकी सखी है, उनको पूछते हैं कि क्या आपकी कन्या को मेरे पुत्र के लिए आप भोजन बनाने को भेज सकती हो, तो बड़ी खुश हो जाती है कीर्ति मैया, बड़े संकोच से ये पूछती है लेकिन बड़ी खुशी से वो हाँ कह देती है। तब से राधा रानी नंदगांव जाती है और भगवान के लिए भोजन बनाती है। तो अभी देखो रोज जा रही है ना, गीता में एक श्लोक है, ध्याये तो विषयाम पुंसा, जो हमारे मन का विषय है, समझो आपको जलेबी खानी, समझो अभी आप इधर कोई दुकान तो नहीं जलेबी का, ठीक है मन में इच्छा तो है, लेकिन समझो आप जलेबी के दुकान के सामने गए, फिर क्या होगा, कुछ अलग होगा ना। जैसे ध्याय तो विषयाम पुंसा, मन में विचार हो रहा है और आँखों के सामने विषय आ गया, तो फिर और आकर्षण बढ़ता है, फिर जेब में हाथ जाएगा, और कितने पैसे, हाँ पर्याप्त पैसे, बोले कितने रुपये का है, हाँ इतना पर्याप्त है, आई कैन बाय 1 किलो। तो फिर खरीदते हैं उसको, फिर खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अगले दिन भी आएंगे तो अगले दिन भी खरीद के खाएंगे। तो उस तरह से वो रोज राजा रानी को देख रही है और रोज वो आकर कुछ बनाकर जा रही है। तो सोचते कितने दिन आना जाना होगा, क्यों ना इसको यही रखा जाए, वाई टू ट्रबल हर एवरी डे अप एंड डाउन। तो एक दिन इतने भाव से वो राजा रानी के सेवा देखकर विभोर हो जाती है यशोदा माई, गले लगाती है उसको, बड़े प्रेम से आलिंगन देती है। आप सोच सकते हैं यशोदा मैया जब प्रेम से किसको गले लगाती है तो कितना आनंद होता होगा। वो तो वात्सल्य मूर्ति है, स्वयं वात्सल्य रस की सर्वश्रेष्ठ भक्त है वो, शी इज एपिटोम ऑफ वात्सल्य। वो वात्सल्य प्रेम से वो राधा रानी को गले लगा रही है, छोटी सी कन्या को, और उनको रहा ना जाता, आंखों से अश्रु आते हैं, गदगद हो जाती है, वो तुरंत जाती रसोई में हल्दी लेकर उसके हाथों में मल लेती है। उसका मतलब क्या होता है, एंगेजमेंट, गांव में ऐसा ही होता है। तो राधा रानी बड़ी खुश हो जाती है, बड़े संकोच करती है, बड़ी लज शर्माती है, मन में बड़ी खुश हो जाती है। और फिर ये काम करके फिर सब सखियाँ चल पड़ती है तो बड़ी खुशी से वापस आ रही है, आनंद में वापस आ रही है। लेकिन जब यहाँ ये जो है ना, ये बरसाने का एंट्रेंस है, गाजीपुर में बरसाना शुरू होता है, जब बरसाना की सीमा में प्रवेश करते हैं तो होश में आ जाते हैं। अभी तक हवा में थे, फिर जमीन में आते हैं। अरे मैया क्या बोलेगी, क्या यही रिवाज है तुम्हारा, यही सिखाया हमने, किसी के घर जाकर सगाई करके खुद आना। हाँ, माता पिता को पूछना नहीं, कुछ परमिशन नहीं, कुछ हाँ जातक मैच करने का नहीं, कुछ नहीं, स्वयं कुछ काम के लिए भेजा, कुछ और काम करके आई। तो ये सब विचार मन में आए कि अभी घर में क्या होगा, हाउ टू हैंडल। तो सबसे जो कोई समस्या होती है तो कहाँ जाती है, पहले ललिता देवी के पास, शी इज़ द बेस्ट एडवाइज़र, बेस्ट काउंसलर राधा रानी। तो वो उनके पास समस्या लेके जाते हैं, क्या करें। तो वो सोचते हैं, कहते करें इतना पिताजी का इतना बड़ा कुंड बना हुआ है, अच्छी तरह से हाथ धो लो, यहाँ पर कोई नहीं, हम लोग ही खाली हैं, कुछ लोग, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आप अच्छी तरह हाथ धो लो, हम भी क्रॉस चेक करेंगे उसको, कितना कुछ है क्या बचा हुआ, धो लो, चले जाओ अपने अपने घर, चुपचाप रहो, कुछ मत बोलो। तो ये अच्छी आइडिया है। तो हाथ धो लेते हैं और चले जाते हैं अपने घर। देखो यहाँ से लेकर वहाँ पर श्री जी का घर है, चले जाते हैं। अगले दिन अपना नित्य कर्म करने के लिए, कुछ बर्तन धोना है, कुछ करना है, स्नान करना है, सब ब्रजवासी लोग आ जाते हैं। देखते तो क्या है, सारा कुंड जो है वो पीला हो गया है। तो ब्रजवासी बड़े चतुर होते हैं, उनको भी अच्छा लगता है सोचने के लिए, नाइस थिंग्स, यू नो। तो पहले तो वो कल्पना के ही फूल हैं कि हाँ वो वहाँ पर जाती है तो गई होगी यशोदा माता, बहुत भाव में आ गई होगी, फिर उसने गले लगाया होगा, फिर हल्दी लगाई होगी, फिर वो शर्माई होगी, फिर यहाँ आई होगी, फिर उसको याद आया होगा, अरे बाप रे, फिर यहाँ पे हाथ आके हाथ धोए होंगे। तभी तो कल्पना के फूल है, सब जोड़ के एक माला बना देते हैं, बाद में बोलते हैं ऐसा ही हुआ है। अभी यह कन्विंस कि ऐसे ही हुआ है, और जाते हैं सीधा भानुवन महल में और कहते हैं, अरे हमने सुना है राधा रानी की तुमने सगाई कर दी नंदलाला के साथ। जस्ट इमेजिन, क्या उनके गट्स हैं रस्सी। जो अभी अभी कल्पना करके यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, वहाँ जाके बोल दे कि हो गई सगाई, तो कीर्ति मैं एकदम सरप्राइज होती है, अरे व्हाट इज दिस। तो क्या करेंगे, वो तुरंत अपनी लड़की को देखेंगे ना, मन आंखों से पूछेंगे क्या कह रहे हैं लोग। तो सर झुका देती है, बताओ क्या हुआ, तो सब बता देती है। तो ये कल्पना के फूल सत्य के फूल थे, जो कल्पना में ही किए थे वो सत्य थे। क्योंकि जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, हमारे गुरुदेव बताते हैं, जो प्रेम करते हैं ना उनको हृदय से, हृदय में से सत्य की अनुभूति होती है। हृदय से अपने प्रियतम के विषय में, जिसको हम प्रेम करते हैं उनके विषय में अनुभूतियाँ होती है, जो हो रहा है वो हमको अदर से पता चलता है कि कुछ हो रहा है। ये सब प्रेमी भक्त हैं राधा रानी की, निरपेक्ष निस्वार्थ भक्त हैं, कैसे निर्भेड़ प्रेम करते हैं, तो कोई कंटेमिनेशन नहीं है। तो राधा रानी बड़ी शर्मा शर्मा के, बस संकोच से, दुख से बताती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। तो ये मन ही मन खुश हो जाते हैं कि हम जो बहुत दिन से चाह रहे थे, संकोच कर रहे थे, कैसे पूछे, इन्होंने अपने आप कर दिया। तो कहते हैं रिस्पॉन्स में हमें कुछ करना चाहिए, तो वो अपना भंडार खोल देते हैं। कहते हैं कि नंद महाराज से भी कई गुना अधिक अमीर धनवान ऋषभानु महाराज थे, क्योंकि श्री जी महारानी जो श्री यानी कि ऐश्वर्य उनके घर में है ना, वो ऐश्वर्य का स्रोत उनके घर पे है, तो वो सभी सबसे अधिक धनवान थे। वो एक मोतियों का भंडार खोल देते हैं, एक बैलगाड़ी भर के मोती नंदगांव भेजते हैं एज अ गिफ्ट, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। वहाँ पर क्या सीन है, जब वो भाव विभोर होकर उनको विदा करती है आंखों में आंसू लेकर, कुछ देर वो भी होश में आती है कि मैंने क्या किया, कीर्ति दीदी क्या कहेगी। यही नंदगांव के संस्कार हैं, किसी के लड़के को पहले बुला लेना विनती करके, अच्छी अच्छी बातें करके, बाद में हल्दी लगा के भेज देना। व्हाट काइंड ऑफ कल्चर इज दिस। हाँ, ऐसे ही दीदी कहेगी, नंद बाबा कहते मेरा मित्र क्या सोचेगा, यही नंदगांव के संस्कार हैं। तो बड़े दुख करते हो, हमने क्या कर दिया, अरे तू यशोदा क्यों करती है ऐसे सब, अपनी भावनाओं को रोकने को सीख जरा, ऐसे मत किया कर, कितनी संकोच की बात है मेरे लिए, मैं क्या करूँगा अभी, किसको मुंह दिखाने लायक नहीं हो गया मैं। ये सब बातें कर रहे हैं पहाड़ के ऊपर से, लेकिन नंदगांव के ऐसे ऊपर से देख रहे हैं तो बरसाने की ओर से एक बैलगाड़ी आ रही है। वो बरसाने का दूत है उसके साथ में, मैसेंजर। वो पहुँचता है घर पर, बोलता है कि ये उनकी तरफ से आपने किए हुए दिव्य कार्य के उपलक्ष्य में इट इज़ गिफ्ट फॉर यू। तो बड़े ओह, पता नहीं इतना झगड़ा होने की संभावना थी, अभी पता नहीं क्या होता था, लेकिन अभी ये तो पूरा एकदम ऐसी तरह से चेंज हो गया सिचुएशन। तो वो भी कहते हमको भी कुछ देना चाहिए, 1,00,000 मोतियों की माला बनाकर भेजी थी उन्होंने, 1,00,000, उसमें 1,000 मोतियों की माला हमारे कृष्ण भगवान चुरा लेते हैं, क्योंकि उनको संकोच है कि हमारे पास तो ऐसे मोती नहीं है वापस देने के लिए, रिटर्न गिफ्ट के लिए। तो सोच रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, चुरा लेते हैं, वो घर के पीछे जाकर उसको बो देते हैं, तो वहाँ से वो मोती उगालते हैं। वो सब पहले हंसते हैं नंद बाबा वगैरह, फिर वो खींच के लेके जाते हैं, देखते तो पूरा खेत मोतियों से भरा है, फिर हंसना बंद करते हैं, मोती बिनना चालू करते हैं, फिर बैलगाड़ी भर के मोती भेजते हैं। इस तरह चलते रहता है ये सब लीला। तो ये जो कुंड है, ये राधा रानी ने अपने हाथ धोए यहाँ पर, इसलिए उसको पीली पोखर कहा गया है। और फिर कुछ दिन बाद में कृष्ण भगवान यहाँ पर आते हैं, उनको पता नहीं ये सब क्या हुआ यहाँ पर, इतना अरे पीला कैसे हो गया, पहले तो अच्छा था पानी, पानी में उतर जाते हैं, ये पूछते पूछते कि ये पीला कैसे हो गया, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, ऐसे उतरते हैं। और कुछ देर बाद पानी में कैसा स्थिति है, दो हाथ ऐसे ऊपर और एक मोरपंख ऐसे, ये तीन पूरे कुंड में ऐसे घूम रहा है, ओनली 3 things आर मूविंग, दो हाथ और एक मोरपंख। फिर कुछ देर बाहर आते हैं, और बाय द वे जब ये पुकार रहे हैं तो सब ब्रजवासी लोग देखने को आते हैं, कौन पुकार रहे हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं, तब ये बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो पूरे पीले रंग के हो जाते हैं, कम्प्लीटली गोल्डन। फिर भी पूछ रहे हैं कि ये पीली वस्तु क्या है, तो पीली वस्तु जो है वो राधा रानी का प्रेम है, जिसके द्वारा वो रंग जाते हैं पूरी तरह से। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर कृष्ण भगवान ने सबसे पहले मैं आगे गौरांग सुंदर के रूप में आने वाला हूँ ये यहाँ पर प्रकट किया, आई विल कम एज गौरांग महाप्रभु, सबसे पहली बार यहाँ पर उन्होंने प्रकट किया। फिर इसी जगह पर होली का निमंत्रण देने पांडे आता है नंदगांव से, उसको सब सखियाँ धो डालती है रंग से। फिर राधा रानी आती है, उसको कहते हैं बेचारा तो निमंत्रण देने को आया है, धोना है तो उसको धोना, जो आने वाला है कल, इसको क्यों बेचारे को तंग करते हो, ये तो बेचारा मैसेंजर है। हाँ, दूध के लिए कभी आतंक नहीं करना चाहिए। तो राधा रानी स्वयं उसको सखियों के चंगुल से छुड़ा देती है पांडे को, वो घर ले जाते हैं अपने, उसको गरम गरम सुगंधित द्रव्य से नहाने की व्यवस्था करती है, गीले कपड़े छोड़कर नए वस्त्र देती है राज वस्त्र के रूप में, और मिठाई खिलाती है, दक्षिणा देती है, पांडे तो ब्राह्मण होता है, और फिर पालकी में बिठा के सम्मानपूर्वक नंदगांव भेजती है। फिर अगले दिन नंदगांव से श्री कृष्ण भगवान जुलूस में आते हैं, पूरा दुल्ला बनकर आते हैं, यहाँ पर पिचकारी, यहाँ पर रंग, यहाँ पर सब होली खेलने के लिए आते हैं। तो यहाँ से ही देखते हैं उधर, तो किस कारण राधा रानी रूठी रहती है और ललिता देवी उनको मनाती रहती है कि विशाखा देवी यहाँ रहती है। तो सब जुलूस पहुँचता है तो वो नेत्रों से पूछते हैं विशाखा को, किधर है वो, तो कहते उधर है, तो बोले जाओ ले आओ उसको, ऐसे नज़र से बताते थे। फिर वो भाग के जाती है, कहती है अरे तुम रुठ के बैठी हो, वो आ गए हैं सज धज के होली खेलने के लिए आ गए, तुम रोते बैठी हो, उठो यहाँ से। तो वो वहाँ से बाहर आती है कि सच में आ गए कि ये लोग मनाने के लिए बोल रहे हैं। तो वहाँ से देखती है कि हाँ आई एम हियर, तो वो पिचकारी निकालते हैं और यहाँ से लगाते हैं पिचकारी, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, लेकिन पिचकारी के आगे उनके मन की भावना जो है वहाँ तक पहुँच जाती है। तुरंत वो सज धज के नीचे आ जाती है, ललिता विशाखा उनको सजाती है और नीचे लेके आती है, और फिर होली शुरू होती है। आपको पता है जिस दिन हम लोग आए यहाँ पर यज्ञ किया, उस दिन क्या था? वसंत पंचमी। वसंत पंचमी होली का पहला दिन है, ये उस दिन की लीला है जिस दिन ठाकुर जी आकर होली आरंभ करते हैं। 40 दिन की होली होती है यहाँ पर, और भाद्रपद के शुक्ल नवमी के दिन रंगीली होली यहाँ पर खेलते हैं। हम लोग जो होली मनाते हैं धूली वंदन, वो पूर्णिमा के दिन होता है, जिस दिन गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ था, फाल्गुन पूर्णिमा। तो फिर वो तय करते हैं कि अभी कैसे होली खेलनी है। तो एक होती है सूखी होली, एक होती है गीली होली, एक पिचकारी वाली होती है, एक गुलाल वाली होती है। मतलब पहले गुलाल की होली खेलेंगे, और नियम क्या होता है कि जब गुलाल की होली खेलते हैं तो पिचकारी का काम नहीं उधर कुछ, नो मिक्सचर। तो होली आरंभ होती है, तो गुलाल की होली में कृष्ण भगवान हारने लगते हैं। तो जब वो हारने लगते हैं तो बहुत चालाक है ना वो, जब हारने लगते हैं तो तुरंत पिचकारी निकाल के मारना शुरू करते हैं। तो राधा रानी देखती है कि अभी ये तो नियम तोड़ रहे हैं, और पिचकारी निकाल के इतने झट से मारते हैं तो वो तो हाथ लगते थे उनके ऊपर, हाथ वो पिचकारी की धार के ऊपर, तो हाथ को लगकर कुछ छींटे ऐसे उड़कर उनके गाल पर गिर जाते हैं। तो वो गुलाल के रंग की छींटे जब उनके गोरे गाल पर गिरते हैं तो ये खुद ही मोहित हो जाते हैं, और पिचकारी छोड़कर उनको देखने लगते हैं, हाउ नाइस हाउ ब्यूटिफुल। तो वो उनका भाव विभोर अवस्था देखकर सारी सखियाँ पीछे से आकर उनको पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है, सारी पिचकारी निकाल लेती है, उनके हाथ ऐसे पीछे से मोड़ देती है पूरा ऐसा ट्विस्ट करके, और मुकदमा करने के लिए ललिता के पास लेके आती है। ये देखो ये गुनहगार को लेके आए हैं, इन्होंने होली का नियम तोड़ा है, क्या दंड दिया जाए उसको। तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ा दंड जो है ना वो है काजल लगाना, मतलब ऐसे प्रेम से नहीं, ऐसे और ऐसे। दूसरा दंड है कि उसका जो उत्तरी वस्त्र है उसको छीन लेना है, दिस इज लाइक इंसल्ट यू नो, अगर आप उत्तरी वस्त्र छीन लेते हैं तो उसका वीरों का परास्त करने के बाद उनका उत्तरी छीन लेते हैं। दिखाते देखो ये अर्जुन का, सॉरी ये कर्ण का, ये दुर्योधन का, ये दुशासन का, हरा कर आए उनको, ये प्रूफ है उसका। तो इनको वैसे ही दंड दिया जाए, तो उनको चुनरी ओढ़ी जाए और सखी बनाया जाए, तीन दंड ऐलान करते ललिता देवी। ठीक है सब लोग उनको पकड़ के, तो राधा रानी अपने हाथ से काजल लगाएगी उनको, तो ऐसे पकड़ के ट्विस्ट करके बांध के उनको ऐसे देखे आते समर्थ काला की, लगाओ उसको। तो जैसे ही वो हाथ काजल में डुबा कर उनको असर लगाने जाती है तो ये क्या करते हैं, मुंह फिरा देते हैं ऐसे। तो फिर दो सखियाँ और आती हैं, मुँह को पकड़ती है, कान पकड़ गई, और फिर उनको अच्छी तरह से पूरी तरह से चारों पांचों दसों उंगलियों से काजल लगाया जाता है। फिर एक सखी आकर दुपट्टा छीन लेती है, दूसरी सखी आकर एक अच्छी लेडीज चुनरी उनको ओढ़ देते हैं, और पीछे कुछ लिखते हैं उनके पीठ पर जो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन कुछ लिखते हैं बहुत ज़ोरदार, बोले जाओ अभी। तो ये सब यहाँ पर हुआ है प्रेम की लीला। तो ऐसा ये सुंदर पीली पोखर धाम है, विश्वान महाराज का बहुत प्रिय स्थली है, इसको प्रिया कुंड भी कहते हैं, राधा रानी का भी बड़ा प्रिय स्थली है। यहाँ पर नौका विहार होता है, यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण भगवान बोट में लीला करते हैं। अभी अभी इस कुंड को रमेश बाबा जी महाराज ने उसका कीचड़ निकाल के उसको साफ करवाया है, कहते हैं कई सैकड़ों सालों से ये साफ नहीं हुआ है जिस तरह से उसको होना चाहिए था। तो कहते हैं कि नॉर्मल जेसीबी से इसका कीचड़ नहीं निकल पाया, वो जेसीबी ही उस कीचड़ में फंस जाती थी, इतना वहाँ पर था। तो यहाँ पर जो कुछ माफिया लोग हैं जो पहाड़ तोड़ते हैं, उन्होंने अपना जेसीबी ला के दिया उनको, स्पेशल जेसीबी, इनका एफर्ट, बच्चे बच्चे भी वो कीचड़ को धो रहे थे, बाबा महाराज भी आकर 70 ईयर ओल्ड 75 ईयर ओल्ड मैन और सो वो भी कीचड़ उठा कर ले जा रहे थे, तो उनको बड़ा लगा कि अरे कुछ करना चाहिए इनके लिए। तो डाकुओं को तक प्रेरणा दिया उन्होंने, उन्होंने अपना स्पेशल जेसीबी लगाया इधर, सारा कीचड़ साफ करवाया। और कहते हैं कई सैकड़ों साल के बाद में पहली बार यहाँ पर नौका विहार हुआ। राधाष्टमी के बाद में कुछ दिन उत्सव होते हैं यहाँ पर, लगातार बूढ़ी लीला होती है, मटकी लीला होती है, डोंगी लीला होती है, तो यहाँ पर वो नौका विहार इस बार पहली बार संपन्न हुआ। और जल भी बहुत स्वच्छ हो गया है अभी। तो आप लोग कैसा है ना, संत लोग होते हैं ना, उनके वजह से ही धाम पुनः पुनः जो लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो पुनः पुनः प्रकट करते हैं। और जनता के लिए जो दूर दूर से आते हैं बेचारे धाम का दर्शन करने के लिए, उनको धाम को बनाए रखते वो। हमने सुना आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पूरा खाली और सूखा रहेगा, तो मैं क्या बताऊँगा आपको, बताऊँगा यहाँ पर पीली पोखर हुआ करती थी, ऐसा ही बताऊँगा ना आपको, इट यूज़ टू बी हियर लाइक दैट। लेकिन आपको नेत्रों में से देखने को नहीं मिलेगा, खाली कानों सुनने को मिलेगा। लेकिन संतों की दया से नेत्रों के लिए भी मिलता है भोजन, दिव्य भोजन। तो संतों के हम परम ऋणी हैं, इसलिए संतों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से धाम दिव्य दृष्टि से प्रकट होता है हृदय में, और आंखों के सामने भी उन्हीं की कृपा से पुनः प्रकट होता है बार बार। श्री जी स्थापन की गई वज्रनाभ के द्वारा, फिर लुप्त हो गई, फिर नारायण भट्ट जी आए नारद मुनि के अवतार, फिर उन्होंने उनको पुनः प्रकट कराया, पुनः स्थापन कराया, फिर यहाँ से वहाँ गए, फिर वहाँ से वापस आए, है ना। संतों का ये कनेक्शन जो है भगवान से, वो परमानेंट बना हुआ है। उनकी ही कृपा से भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, पुनः प्रकट होते हैं, और संतों की वजह से धाम पुनः प्रकट होता है। जब छह गोस्वामी वृंदावन में आए थे तो वृंदावन पूरा लुप्त हो गया था, कंप्लीट पूरा जंगल था, कुछ भी कौन सा वन कौन सा है, क्या कहाँ लीला है, कुछ पता नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार सारे गोस्वामियों ने ब्रज को पुनर्प्रस्थापित किया, सारे वनों को, मंदिरों को, विग्रहों को, ग्रंथों को पुनर्प्रस्थापित करके पुनः प्रस्तुत किया। फिर वो अभी लुप्त होने जा रहा है, फिर कई आजकल के संत उसको दोबारा प्रकट करते हैं, और हम जैसे पतित जीव यहाँ पर आके उसका दर्शन ले सकते हैं, अपने आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। तो हम लोग सब जाएंगे अभी, नीचे उतरेंगे और पीली पोखर का बड़े ही क्या कहते हैं उसको, विथ ऑ एंड रेवरेंस, बड़े आदर के साथ, सम्मानपूर्वक, बिना कुछ बातें यहाँ वहाँ की ना करते हुए एकदम शांतिपूर्वक मौन से जाएंगे नीचे। पहले प्रणाम करेंगे चप्पल निकाल के, फिर जल के तीन छींटे सर पे डालेंगे, तीन बार उसका आचमन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? ये जो पीली वस्तु है वो हमें भी प्राप्त हो जाए, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम राधा रानी का जो है उसका अंश कुछ हमें भी प्राप्त हो जाए, तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। वो तो पूरे पीले हो गए, पता नहीं हमारा क्या होगा लेकिन हम चाहते ज़रूर हैं इस जीवन में सारे अलग अलग रंगों को छोड़कर हम ये सुनहरा पीला रंग ग्रहण करना चाहते हैं। राधा रानी का प्रेम है, वही स्रोत है सबका, सबको प्रेम देने वाला स्रोत वही है। शी इज़ द ओनली अल्टीमेट सोर्स ऑफ दिस येलो सब्सटेंस। तो उन्हीं को पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे हमें भी वो पीली वस्तु प्राप्त हो जाए। जय जय श्री राधे।